Iran Radio Podcast।
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। ১৬৩০ में एक ईरानी युवक दक्षिण भारत के शहर हैदराबाद पहुंचा। एक ऐसा शख्स जिसका भाग्य भारत के सम्राट के दरबार और इस देश की राजनीति से जुड़ना था। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 23वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सईद नाम के युवक की, जिनका जन्म इस्फहान में हुआ था। उनके पिता तेल बेचते थे, जिससे होने वाली आमदनी से मुश्किल से उनके परिवार की गुजर बसर होती थी। सईद को अपने पिता की तंगदस्ती का एहसास था। सभी को उम्मीद थी कि बेटा अपने पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाएगा और एक दिन उनकी जगह ले लेगा, लेकिन उसे अपनी बुद्धि और प्रतिभा पर भरोसा था, इसीलिए वो कोई दूसरा काम करने के बारे में सोचता था। 16 साल की उम्र में मोहम्मद सईद ने इस्फहान में एक जौहरी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। ये ईरानी जौहरी हर साल ईरान से घोड़े हैदराबाद में बेचने के लिए ले जाता था और उसके बदले वहाँ से हीरे जवाहरात खरीद कर लाता था। कई साल तक दुकान में काम करने के बाद एक बार सईद भी अपने उस्ताद के साथ हैदराबाद की यात्रा पर गया। इस बार भी उसके उस्ताद ने हैदराबाद में कई घोड़ों के बदले हीरे जवाहरात खरीदे और ईरान वापस लौट आए, लेकिन उनका शागिर्द हैदराबाद से वापस नहीं लौटा। हैदराबाद दक्षिणी भारत के गोलकुंडा इलाके में स्थित था। ये इलाका धार्मिक शिया शासन के तहत आता था, जिसे कुतुब शाही कहा जाता था। कुतुब शाही शासकों के ईरान के धार्मिक शिया शासन सफवी के साथ अच्छे रिश्ते थे। इस शहर में भी मोहम्मद सईद ने एक जौहरी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द हीरे के कारोबार के दांव पेच सीख लिए और अपना कारोबार अलग कर लिया। असाधारण प्रतिभा के कारण बहुत ही कम समय में सईद ने अपना कारोबार कई गुना बढ़ा लिया और एक मशहूर जौहरी के रूप में अपनी पहचान बना ली। भारत पहुंचने के 4 साल बाद मोहम्मद सईद ने राजा से निकट होने का फैसला किया। गोलकुंडा के राजा का नाम अब्दुल्ला कुतुब शाह था और उसका वित्त मंत्री एक ईरानी था। सईद ने अपने हमवतन से संपर्क किया और दरबार में कोई काम देने का आग्रह किया। मंत्री ने उसे अभिलेखागार का प्रमुख नियुक्त कर दिया। ये एक ऐसा काम था जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इससे उसे अदालत के रहस्यों की जानकारी रखने की अनुमति थी। 2 साल बाद मोहम्मद सईद को क्षेत्र की सबसे बड़ी बंदरगाह का प्रमुख नियुक्त किया गया। राजा सईद के काम से संतुष्ट था, इसलिए उसने उसे रक्षा मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी सौंप दी। इस विभाग में कई प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां शामिल थीं और इसके धारक को राज्य की बुजुर्ग हस्तियों में से माना जाता था। राजधानी में मोहम्मद सईद की पहली जिम्मेदारी राजा की मां के लिए एक सुंदर 4 मंजिला इमारत का निर्माण करवाना था। मोहम्मद सईद इस्फहानी ने इस दौरान काफी धन जमा कर लिया था। कुतुब शाह ने 4,000 सिपाही उसके अधिकार में दे दिए थे। इसके अलावा उसने अपनी एक फौज भी बनाई, जिसमें 5,000 घुड़सवार और 20,000 प्यादा फौजी शामिल थे। इस फौज में 300 हाथी और 400 ऊंट भी शामिल थे, लेकिन सईद के अधिकार में हीरे जवाहरात की जो खदानें थीं, उसके बराबर किसी भी चीज का महत्व नहीं था। ये खदानें राजा की थीं, जिसे वो कुछ शर्तों के साथ पट्टे पर देता था। इन शर्तों में से एक ये थी कि बड़े हीरे राजा को भेजे जाएंगे। मोहम्मद सईद ने राजा की संवेदनशीलता को भड़काने से बचने के लिए इनमें से कई खदानों को अन्य नामों से पट्टे पर लिया। चूंकि वो राज्य का सीनियर अधिकारी था, इसलिए बड़े हीरों के स्थानांतरण की निगरानी भी करता था। वो इन हीरों को अपने पास रख लिया करता था और बाकी बचे हीरों को राजा के पास भेज दिया करता था। मोहम्मद सईद के पास कुछ जहाज भी थे। दक्षिण एशिया और फारस की खाड़ी के साथ गोलकुंडा के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उसके अधिकार में था। यूरोपीय व्यापारी उसकी शक्ति से डरते थे और उसके लिए कीमती उपहार भेजते थे। मोहम्मद सईद की प्रगति, शक्ति और दौलत ने अब्दुल्ला कुतुब शाह के दिल में संदेह और ईर्ष्या पैदा कर दी। राजा ने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए उसे अपने दरबार में तलब किया। शाह की माँ हयात बख्श बेगम ने मोहम्मद सईद को, कि जिसने उनके लिए खूबसूरत इमारत का निर्माण किया था, सूचना दी कि उनका बेटा उसे जहर देना या अंधा करना चाहता है। ये सूचना मिलते ही सईद ने कुतुब शाह के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने एक खत लिखकर मोहम्मद सईद के समर्थन का ऐलान कर दिया और उसकी मदद के लिए अपने सिपाही भेज दिए। शाहजहां की फौज ने हैदराबाद की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद कुतुब शाह आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गया। उसके बाद मोहम्मद सईद को मुगल बादशाह का वजीर आजम नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद किस्मत ने सईद के लिए नई राहें खोल दी। मोहम्मद सईद दिल्ली की ओर रवाना हुआ। शाहजहां का शुक्रिया अदा करने के लिए वो बहुमूल्य उपहार अपने साथ लेकर गया था। उसने बादशाह को पहले 200 हाथियों की जंजीरें भेंट की, फिर 1000 सोने के सिक्कों का तोहफा पेश किया। इसके अलावा उपहार में बेशुमार लापिस लाजुली, यमनी अकीक, लाल अकीक, पन्ना और याकूत जैसे कीमती पत्थर शामिल थे। मोहम्मद सईद आखिरी उपहार बादशाह को अपने हाथों से देना चाहता था। वो हाथ में एक छोटा सा बक्सा पकड़े हुए राजा के सिंहासन के पास पहुंचा और बादशाह की आंखों के सामने उसने बक्सा खोला। अतुलनीय चमक से शाहजहां की आंखें चौंधी आ गईं। बक्से में एक बड़ा हीरा था, एक हीरा जिसका वजन 182 या 186 कैरेट था, कोहिनूर। कोहिनूर फिर से दिल्ली दरबार में लौट आया था। 110 साल पहले कोहिनूर सफवी दरबार से निकलकर दक्षिणी भारत के बीच में कहीं खो गया था। कोई नहीं जानता था कि इस दौरान यह हीरा कितनी बार खरीदा और बेचा गया और उसने कितने लोगों की किस्मत बदली। शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा किया। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब अंग्रेजों से अच्छी तरह निपटना जानता था। वो अपनी बहादुरी और बेमिसाल प्रतिभा के कारण धीरे धीरे एक शक्तिशाली सम्राट बन गया। उसके शासनकाल में पुर्तगाली बहुत कमज़ोर पड़ गए, अंग्रेज़ों को सज़ा मिली और उन्हें सम्राट की शक्ति का सामना करना पड़ा। डचों ने अपनी गतिविधियां ज़्यादातर सीलोन द्वीप और उस क्षेत्र तक सीमित कर दी जिसे आज इंडोचीन के नाम से जाना जाता है। शायद सम्राट को एक नई यूरोपीय शक्ति का पता नहीं था, जिसने अपने पड़ोसियों की तुलना में थोड़ी देर से भारत में रुचि लेना शुरू किया था। वो शक्ति थी फ्रांस। 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया और तब उसे फ्रांसीसियों से कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन औरंगजेब की मौत मुगल साम्राज्य के अधिकार और ताकत की मौत के बराबर थी। उसके बाद 12 वर्षों के दौरान 4 राजा गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। शाही दरबार और राजधानी में पैदा होने वाली अराजकता को यूरोपीय देशों, विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस ने भारत में अपने पैर मजबूत जमाने के सबसे अच्छे अवसर के रूप में देखा। औरंगजेब के बाद जो पांचवां राजा गद्दी पर बैठा वो 17 साल का लड़का था, जिसने शासन के सभी मामलों को अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद ऐशो इशरत में डूब गया। दुनिया के सबसे अमीर मुगल साम्राज्य की कमजोरी और अतुल्य खजाने ने ईरान के शासक नादिर शाह अफशार को इस देश पर हमले के लिए प्रोत्साहित किया। 11 फरवरी 1739 को दिल्ली के पास नादिर शाह की सेना का सामना मोहम्मद शाह की सेना से हुआ। युद्ध दोपहर को शुरू हुआ और केवल 3 घंटे चला। ईरान की फौज और तोपखाने की गोलाबारी ने भारतीय सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद शाह ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में नादिर शाह को दो हाथियों की जंजीरें भेजी। एक हाथी के पीछे रत्नों से भरा एक संदूक था और दूसरे के पीछे सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के उपहारों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो रात्रि भोज में जाने के लिए तैयार हो गया जो मोहम्मद शाह ने अपने महल में उसके सम्मान में आयोजित किया था। महल के सेंट्रल हॉल के बीचों बीच तख्त ताऊस रखा हुआ था, एक ऐसा तख्त जिसकी लंबाई 180 और चौड़ाई 120 सेंटीमीटर थी। फर्श से उसकी ऊंचाई 4 सीढ़ियों तक थी। शुद्ध सोने के 12 पायों पर वो टिका हुआ था। पाए माणिक पन्ना और हीरे से सजाए गए थे। तख्त के ऊपर एक नाचते हुए मोर की मूर्ति बनी थी जिसके पर नाजुक मोतियों से सजे हुए थे। मोर का शरीर नीलमणि माणिक पन्ना और कीमती पत्थरों से बना हुआ था। खाने के बाद नादिर और मोहम्मद शाह के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। रात के खाने के बाद नादिर मोहम्मद शाह के साथ बातचीत करने लगा। नादिर ने मोहम्मद शाह के सामने हिंदुस्तान का पूरा खजाना, तख्ते ताऊस, 9 अन्य रत्न, जड़े हुए सिंहासन, 1000 हाथी, 17000 घोड़े, 10000 ऊंट, 60000 पुस्तकें, 100 लेखक, 300 वास्तुकार, 200 लोहार और 100 जौहरी देने की शर्त रखी। नादिर शाह को ये नहीं पता था कि मोहम्मद शाह के पास एक और अनमोल हीरा है जिसके सामने उसने जो भी मांगा वो कुछ भी नहीं है। इस दावत के कुछ दिन बाद नादिर शाह को सूचना मिली कि मोहम्मद शाह की पत्नियों में से एक उससे खुफिया रूप से बातचीत करना चाहती है। मोहम्मद शाह काफ़ी समय से इस पत्नी की उपेक्षा कर रहा था और उसने एक राज फाश करके उससे बदला लेने की योजना बनाई। दिल्ली के खजाने में एक बहुत बड़ा और अनमोल हीरा था जिसे शाह ने खजाने से निकलवा दिया था ताकि वो ईरानियों के हाथ न लग सके। इस हीरे को बादशाह ने अपनी दस्तार की तहों में छिपा रखा था। जब नादिर शाह ईरान लौटने वाला था तो उसने मोहम्मद शाह के महल में एक बड़ी पार्टी आयोजित करने का आदेश दिया। इस पार्टी में हिंदुस्तान के बुजुर्ग और प्रमुख हस्तियों में से करीब 100 लोग शामिल हुए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की कमर पर कीमती पत्थरों से सजी एक तलवार को बांधा और उसके नाम से सिक्के ढालने का आदेश दिया। इस तरह उसने हिंदुस्तान का साम्राज्य मोहम्मद शाह को लौटा दिया। फिर हिंदुस्तानी गणमान्य व्यक्तियों को उपहार दिए। समारोह के अंत में एक पुराने रिवाज के अनुसार नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से दोस्ती की निशानी के रूप में अपनी दस्तानों या पगड़ियों का आदान प्रदान करने के लिए कहा। मोहम्मद शाह के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी दस्तार नादिर शाह को दी और उसकी दस्तार अपने सिर पर रख ली। नादिर शाह ने हाथ के इशारे से समारोह की समाप्ति की घोषणा की और जल्द ही अपने कमरे में लौट गया। उसने बहुत ही ध्यान से मोहम्मद शाह की दस्तार खोली। दस्तार की तह में एक बड़े हीरे की चमक ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। कोहिनूर, कोहिनूर दूसरी बार ईरान लौट रहा था। जो धन नादिर शाह हिंदुस्तान से लाया था वो ना ही खुद उसके लिए शुभ साबित हुआ और ना ही ईरान के लिए। नादिर के बेटे पर बाप के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया और उसे गिरफ्तार करने के बाद बाप के आदेश से उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई। बेटे के अंधेपन के बाद नादिर को बहुत दुख और निराशा हुई। नादिर शाह का वहशीपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोगों के कत्लेआम और कमांडरों की हत्याओं से उसके अधिकारी तंग आ चुके थे, जिसके बाद कुछ कमांडरों ने नादिर शाह को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। नादिर शाह के जासूसों ने इस योजना के बारे में उसे आगाह कर दिया, जिसके बाद उसने एक अफगान कमांडर को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। 23 साल के अफगानी कमांडर का नाम अहमद था। अहमद 8 साल पहले कंधार में नादिर की फौज में शामिल हुआ था। इस कमांडर की बहादुरी ने नादिर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उसने अफगान कमांडर से कहा कि कल सुबह तक सभी ईरानी कमांडरों को पकड़कर कैद में डाल दो, लेकिन विद्रोहियों ने अपनी योजना पर अमल करने के लिए सुबह का इंतजार नहीं किया और रात में ही नादिर के टेंट पर उन्होंने हमला कर दिया और उसका सिर तन से जुदा कर दिया। अहमद खान को जब इस हमले की खबर मिली तो वो तेजी से नादिर के टेंट की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन जब तक हमलावर अपना काम तमाम कर चुके थे, अहमद खान टेंट में गया तो उसने बिना सिर के शव से सल्तनती मोहर वाली अंगूठी निकाली और वो छोटा बोगचा उठाया जिसे नादिर हमेशा अपने साथ रखता था। नादिर शाह कोहिनूर और हिंदुस्तान से लाए गए अन्य कीमती हीरे जवाहरात इस छोटे से संदूक में रखता था। अहमद खान अपने टेंट में गया और उसने अपने सिपाहियों के साथ अफगानिस्तान का रुख किया। 20 जून 1747 को कोहिनूर का एक नया सफ़र शुरू हो गया और अहमद खान उसे अफगानिस्तान ले गया, लेकिन ये इस बेनज़ीर हीरे का अंतिम पड़ाव नहीं था।